प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, पुस्तक आठवी, लेक्चर नंबर 655. ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूं, सुर असुर गणपति वंदने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करुणो कर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थंकर अने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वणेनो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये गणधरने अध्यापको ने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो साम्यनि देनाथि शिव प्राप्ति बने. आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जैसेन आचार्य ने तात्पर्योक्ति टीका लिखी है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. हम आज से आठवीं पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं. ये गाथा नंबर है 184. पहले हम गाथा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे.
कुवं सभावमादा अवदिह कत्ता सगस्स भावस्स पोगल दौवमयाणं नदुकत्ता सौवभावाणं निज भाव करतो जीव छे करता करे निज भावनो पण ते नथी करता सकल पुद गल दरवमय भावनो. देखो इसका हेडिंग क्या था कि अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है. कर्म का अर्थ क्या है?
कार्य.
कार्य. अभी जो हमने गाथा पढ़ी थी उसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं. मैं हिंदी में से पढ़ रही हूँ. अपने भाव को करता हुआ, स्वभावम कुर्वन है ना, स्वभावम कुर्वन, अपने भाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, परंतु पुद्गल द्रव्य में सर्व भावों का करता नहीं है. परद्रव्य के भावों का वह करता नहीं है, भावों का यानी पर्यायों का वह करता नहीं है, अपने पर्यायों का करता है. यहाँ भाव पर्याय के अर्थ में लिया क्योंकि गुणों का कर्ता होने का सवाल नहीं है. भाव शब्द गुण के लिए भी आता है, कहीं पर्याय के लिए भी आता है क्योंकि कर्ता है जो नहीं था उसका किया. कर्ता किसको कहेंगे? जो नहीं था उसका कर्ता कहेंगे. गुण तो अनादि से है तो गुण का कर्ता होने का सवाल नहीं है. यहाँ स्वभाव है ने स्व पर्याय की बात है, अपने पर्याय का करता है। देखो टीका पढ़ते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। इसलिए आत्मा को उस रूप होने की यानी परिणमित होने की है ना बात आ गई ना, परिणमित होने उस रूप होने की नहीं, उस रूप परिणमित होने की शक्ति का संभव है। संभव यानी पॉसिबिलिटी, इस अर्थ में संभव शब्द नहीं है, हाँ यानी है, इस अर्थ में होता है। क्या कहते हैं, आत्मा को उस रूप होने की यानी परिणमित होने की शक्ति का संभव है, यानी शक्ति का है, सद्भाव है। क्योंकि संभव शब्द हम अपनी भाषा में पॉसिबिलिटी के लिए लेते हैं, उस अर्थ में यहाँ नहीं है। हाँ संभव यानी उसकी वो तो शक्ति का सामर्थ्य है, संभव है उसकी अस्थि है, इस अर्थ में यहाँ लेना है। अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। इस प्रकार वह आत्मा उसे ने स्वभाव को स्वतंत्रतया करता हुआ उसका करता अवश्य है, अपने भावों का करता वो अवश्य है, क्योंकि वो स्वयं करता है उसका। और स्वभाव आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से, वो पर्याय को क्या कहते हैं, आत्मा के द्वारा प्राप्य हुआ अवश्य ही आत्मा का कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम आत्मा का कर्म है। जैसे यहाँ शब्द है ना प्राप्य, ऐसे और कौन से शब्द है पर्याय के लिए, हाँ विकार्य और निर्वर्त्य, तीन शब्द आते हैं समय सार में आए हैं, प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य। यानी वो स्वपरिणाम ही आत्मा का कर्म है। परंतु अभी आगे नेक्स्ट एक पैराग्राफ है ना, आत्मा पुद्गल के भावों को नहीं करता, यानी पुद्गल का जो परिणमन है उसको आत्मा नहीं करता, क्योंकि वे पर के धर्म है। और स्वभाव का करता है क्योंकि वह स्व का धर्म है, पहले बताया था। इसलिए आत्मा के उस रूप होने की शक्ति का असंभव होने से वे आत्मा का कार्य नहीं है। यानी वो उस रूप होने की शक्ति का उसको बिल्कुल है ही नहीं, वो तो नासी है, उसमें सद्भाव है ही नहीं है, असद्भाव है, असंभव यानी असद्भाव है उसका। इस प्रकार वह आत्मा उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे आत्मा के द्वारा न किए जाते हुए उसका कर्म नहीं है। यानी वो पुद्गल के द्वारा प्राप्य हो गया, आत्मा के द्वारा प्राप्य नहीं हो गया, क्योंकि वो पुद्गल के कार्य है। इस प्रकार पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। अभी पुद्गल परिणाम में पुद्गल की जो कोई अवस्था है वो सब लेना उसके अंदर। अब हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरे में 358 पेज है। शक्ति संभव ने शक्ति पाई जाती है, इस अर्थ में आता है वो। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये संभव शब्द बहुत बार ढूंढारी भाषा में ट्रांसलेशन करते भी आया हुआ था, तो पॉसिबिलिटी के अर्थ में नहीं आता वो, नहीं वो पाया जाता है ऐसा, संभव है ना, वो पाया जाता है। शक्ति का संभव होना है ना शक्ति का पाया जाना, हाँ संभव है ना, वो सद्भाव है, इस सद्भाव के अर्थ में लेना। अभी जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। इसी पेज में है ना, एक मिनट, हाँ नीचे इसी पेज पर नीचे है, पहले पेज पर। हाँ मैं हिंदी मेरे मूल पुस्तक में से पढ़ रही हूँ, आप उसमें देखना उसके साथ कंपेयर करना। एवं भेद भावना कथन मुख्यतया, भेद भावना कथन की मुख्यता से, ये पहले बताया था ना, भेद ज्ञान की बात की थी जीव में और वो तो षटकायु में वो भेद है, तो उसका भेद ज्ञान करना चाहिए तो स्व प्रवृत्ति हो जाएगी, नहीं तो पर प्रवृत्ति चलती रहेगी। भेद ज्ञान के अभाव में परद्रव्य प्रवृत्ति होती रहती है, तो वहाँ शुभ और अशुभ भाव होते रहते हैं। ये बात हो गई थी। तो कहते हैं भेद भावना कथन मुख्यतया सूत्रद्वय ने दो सूत्रों के द्वारा पंचम स्थलम गतम, पांचवा स्थल गया। अथ अब यहाँ पर आत्मनः निश्चयेन रागादि स्वपरिणाम एव कर्म, यानी आत्मा के निश्चय से रागादि स्वपरिणाम ही उसके कर्म है, न च द्रव्य कर्म इति प्ररूपित, यानी द्रव्य कर्म उसका कार्य नहीं है, यानी स्वपरिणाम ही आत्मा का कर्म है, द्रव्य कर्म आत्मा का कर्म नहीं, यानी आत्मा का कार्य नहीं। पंचम स्थल यानी हर एक अधिकार में हम कहते पांच स्थल है, दस स्थल है, स्थल ने उसके टॉपिक्स अलग अलग बताए, फिर वो एक टॉपिक में कितनी गाथा है उसको बताते हैं। तो दो गाथाओं का पांचवा स्थल गया, यानी जो अभी हमने पढ़ा वो गया। अभी आगे क्या विषय आ रहा है यहाँ पर, अथ यानी अब, जो गतम वो बता दे उन्होंने। हमेशा ये जैसे नाचार्य की विशेषता है, हर गाथा में पहले क्या विषय गया उसको बताते हैं, अब आने वाला विषय क्या है उसको बताते हैं, और बाद में गाथा का एक एक शब्द लेके उसका अर्थ बताते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पेज नंबर है अब पहले ही पेज नंबर नीचे, अथ आत्मनः यानी आत्मा के निश्चय से, निश्चय ने निश्चय से रागादि स्वपरिणाम। देखो ये रागादि है वो आत्मा के ही परिणाम है, आत्मा की ही पर्याय है। आपको समझ में आ रही की बात नहीं समझ में आ रही? अभी अशुद्ध निश्चय नहीं वगैरह आत्मा का, हाँ बिल्कुल है, अभी तो आत्मा का वो कार्य है, ये द्रव्य गुण खरेखर निश्चय से नहीं, खरेखर खरेखर हाँ, नए लगाना है तो अशुद्ध निश्चय नहीं कहो, पर निश्चय नहीं खरेखर वो आत्मा का ही कार्य है, क्योंकि आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है, आत्मा का वो परिणाम है। तो अथ आत्मन निश्चय न, निश्चय से रागादि स्वपरिणाम एव कर्म। अब इसमें किसमें किसमें कंपेयर कर रहे हैं, द्रव्य कर्म और रागादि में, तो इसमें आत्मा का कर्म है ना, आत्मा का कार्य क्या है, तो रागादि उसका कार्य है, उसका स्वपरिणाम है, ये द्रव्य कर्म जो है ज्ञानावरणादि वो आत्मा का कार्य नहीं है। फिर से रागादि स्वपरिणाम एव कर्म, किसके, आत्मा के, रागादि स्वपरिणाम है वही आत्मा के कर्म है, न च द्रव्य कर्म, परंतु द्रव्य कर्म उसका कर्म है ने उसका कार्य नहीं है। रागादि परिणाम आत्मा का कर्म है ने आत्मा का कार्य है, हाँ, परंतु द्रव्य कर्म जो है वो आत्मा का कार्य नहीं है। इति प्ररूपयते, ये अभी यहाँ प्ररूपण चलेगा, इस गाथा का विषय बता रहे हैं। हाँ देखो कुवम स्वभावम, ये बोल्ड है क्या इसमें, हाँ यानी कुर्वन स्वभावम, यानी अभी वो स्वभाव स्वभाव करता है। अभी स्वभाव का अर्थ क्या है वो बता रहे, अत्र यानी यहाँ पर स्वभाव शब्देन यद्यपि शुद्ध निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो बन्यते, तथापि क्या कहते हैं, जब हम स्वभाव कहते हैं, जब जहाँ जगह ना स्वभाव का आश्रय ले लो वगैरह, तब कौन उसको कहते, हाँ उसके लिए यानी शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव कहने में आता है, जब स्वभाव शब्द से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव कहने में आता है शुद्ध निश्चय से। आपने जो बताया था ना शुद्ध निश्चय, तो यहाँ शुद्ध निश्चय से लिया। तथापि फिर भी कर्मबंध प्रस्तावे, अभी यहाँ विषय कौन सा चल रहा है, कर्मबंध का, तो कर्मबंध के विषय में रागादि परिणामों अपि अशुद्ध निश्चयेन स्वभावो बन्यते, यानी रागादि जो परिणाम है उनको भी अशुद्ध निश्चय से स्वभाव कहने में आता है। ख्याल में आई बात, फिर से देखो स्वभाव हमेशा क्या किसको कहते हैं, जो त्रिकाली कायम रहता है उसको हम स्वभाव कहते हैं, तो शुद्ध निश्चय से उसको स्वभाव कहेंगे, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो है त्रिकाली, हम हमेशा कहते हैं स्वभाव कैसा होता है, याद है कैसा कैसा होता है, स्वभाव के पांच पॉइंट्स बताए थे हमने, क्या भूल गए, हाँ स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, हाँ अमर्यादित है, असहाय है, और भी जो लगा सकते हैं अनेक बातें उसमें, ये मुख्य तो पाछा ही है उसमें। तो कहते हो तो निश्चय नहीं से तो उसी को हम स्वभाव कहते हैं। ये गाथा में स्वभाव किसको कहेंगे? आत्मा स्वभाव का करता है, स्वभाव का करता, वो जो कायम रहने वाला जो है उसको कोई करता नहीं है। तो यहाँ जो करता कहा वो किसके लिए कहा? तो पर्याय के लिए कहा। तो यहाँ देखो, तथापि फिर भी हमारा विषय कौन सा चल रहा है? कर्मबंध का। तो कोई मान ले कि ये कर्मबंध जो हुआ है ज्ञानावरण आदि का, वो आत्मा का कार्य है, तो उसका ऐसा कोई समझे नहीं, इसीलिए क्या बता रहे हैं? ये कर्मबंध के विषय में प्रस्ताव है, यानी कर्मबंध के विषय में रागादि परिणामों अपी, अपी के बाद पी और अ, पिय हुआ, यानी रागादि परिणाम भी अशुद्ध निश्चय न स्वभाव बन्यते, यानी रागादि परिणामों को भी अशुद्ध निश्चय से स्वभाव कहने में आता है। तम स्वभावम कुर्वन, उस स्वभाव को करता है। स कहा, कौन करता है? आदा यानी आत्मा, आत्मा उसको करता है। यहाँ बोल्ड है ना सर्वत्र, आदा यानी आत्मा करता है, हाँ वो बराबर है, नहीं यहाँ डाला है बोल्ड, लास्ट गाथा में नहीं था। अब आगे पढ़ती हूँ मैं, आगे यानी आत्मा, हवदी ही कत्ता यानी आत्मा, कर्ता भवती ही स्फुटम यानी खरेखर कर्ता होता है या करता है। कस्य, किसका करता है? सगस्य भावस्य, स्वकीय चिद्रूप स्वभावस्य रागादि परिणामस्य, यानी अपने चिद्रूप चैतन्य रूप स्वभाव का और रागादि परिणाम का करता है, अपने भावों का करता है। अपने भाव में वो शुद्ध भाव भी आ गए और रागादि अशुद्ध भाव भी आ गए, तो जीव यानी आत्मा अपने भावों का करता है। तदेव तस्य रागादि परिणाम रूपम निश्चयेन भाव कर्म बन्यते, यानी इसीलिए उसका जो रागादि परिणाम रूप जो है उस निश्चय से उसको भाव कर्म कहते हैं। कस्मात, क्यों? आगे बढ़ते हैं, देखो, तप्ता यह पिंडवत तेन आत्मना प्राप्यत्वात् व्याप्यत्वात् इति, एक मिनट, तप्ता यह पिंडवत यानी वो तो गर्म किए हुए, तप्ता यानी तपाया हुए पिंड के समान, आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से और व्याप्य होने से, पर्याय को हम क्या कहते हैं? वो प्राप्य है, व्याप्य है, तो उसको कहेंगे, इसलिए उसको आत्मा का ही भाव कर्म कहा है निश्चय से, क्योंकि आत्मा ही उसको प्राप्य कर, प्राप्य करता है, उसको व्याप्य करता है। पोगल दव्यम दव्यमयाणम नदुकत्ता स्वभावानम, चिद्रूप आत्मनो विलक्षणानाम, अभी पुद्गल द्रव्य का डायरेक्ट नहीं लिया, अभी पुद्गल द्रव्य बताने के लिए चिद्रूप आत्मन विलक्षणानाम, चिद्रूप ने चैतन्य रूप आत्मा से, विलक्षण ने विपरीत लक्षण, अन्य लक्षण, भिन्न लक्षण, भिन्न लक्षण वाले पुद्गल द्रव्यमयानाम, पुद्गल द्रव्यमय ऐसे जो भाव है, न तो कर्ता सर्वभावानाम ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पर्यायानाम इति, यानी पुद्गल द्रव्यमय सर्व भावों का आत्मा करता नहीं है। तो सर्व भाव में किसको लिया? कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जो पर्याय है उन पर्यायों का आत्मा करता नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल में है, पुद्गल परिणाम में है, और आत्मा के जो भाव है वो चैतन्य चिद्रूप है या रागादि परिणाम रूप होते हैं। ततो ज्ञायते, इससे जाना जाता है जीवस्य रागादि स्वपरिणाम एव कर्म, यानी इसे क्या जाना जाता है कि जीव के रागादि स्वपरिणाम ही जीव के कर्म है, तस्यैव स कर्ता इति, और उसी का वह करता है। जड़ कर्म का आत्मा करता नहीं है। आशा बेन को कितना समझा? क्योंकि अभी ये जो क्या कहते हैं ऐसा करके सुन रही है, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रही बात है ना। अच्छा वो देखो ये विषय क्या है, आत्मा किसका करता है? जड़ कर्म का है कि अपने रागादि का है? हाँ क्यों? वो उसका परिणाम है, वो स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, वो उसका व्याप्य है और उसका वो प्राप्य है। प्राप्य भी कहा, व्याप्य भी कहा। वो व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य का अपने पर्याय के साथ होता है, वैसे जो प्राप्य पर्याय को प्राप्य कहते हैं, आत्मा के द्वारा वो प्राप्य हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे गुरुदेव का प्रवचन, पेज नंबर 2। ये तो 2 हो गए ना, टीका तो हो गई। 3 नंबर पेज पर पुस्तक 8वीं, 2 नंबर तो हो गया ना, टीका हमने पहले पढ़ी थी। अभी प्रवचन ही लेना है गुरुदेव का। अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है, कर्म यानी कार्य। लो क्या कहते हैं कि आत्मा का कार्य क्या है, कि परद्रव्य की कुछ व्यवस्था करता है, ऐसा आत्मा का कार्य है। हम तो पूरे घर की व्यवस्था रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बिना वो सारा अव्यवस्थित हो जाता है। कर्म बांधने का काम आत्मा करता है, वह बात लेनी है। कर्म बनते हैं, वह अपना कार्य है कि नहीं? तो दूसरे पदार्थ का कार्य अपना कहाँ से आया? क्या कहते हैं, कर्म बनते हैं तो वो कौन से द्रव्य का कार्य है? पुद्गल, कर्मान वर्गणा कर्म रूप हो जाती है। तो कर्मान वर्गणा पुद्गल है और कर्म भी पुद्गल ही है, वही उसी की अवस्था है। तो कहते क्या कर्म बनते हैं वो अपना कार्य है, यानी जीव का कार्य है कि नहीं? तो दूसरे पदार्थ का कार्य अपना कहाँ से आया? राग द्वेष करे वह उसका कार्य है, परंतु कर्म बंधन का काम आत्मा कर सकता है ऐसा है नहीं। क्योंकि वो परद्रव्य का कार्य, आत्मा उसको कुछ नहीं कर सकता। कहो भाई कैसे होगा, कोई ठीक करे तो यहाँ संतोष होता है कि नहीं? अब नीचे गाथा के नीचे, प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्व भाव को करता है। ये स्व और भाव अलग अलग लिखा, अपने भावों को करता है। देखो यह स्वभाव का अर्थ यहाँ राग द्वेष है। देखो जिस गाथा में जिस अर्थ में उन्होंने वो शब्द का, क्योंकि शब्द तो थोड़े होते हैं संख्यात और अर्थ तो अनंत होते हैं, तो कहाँ कौन से गाथा में किस अर्थ में वो शब्द आया है वो समझना हमारी ड्यूटी है। तो कहते अर्थ यहाँ राग द्वेष है, समझ में आया? आत्मा करे तो क्या करे? अज्ञान में राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प का करने वाला अज्ञानी होता है। वो मानता है मैं कर सकता हूँ। वो तो ज्ञानी होने पर उसके हो भी जाएगा, वो ऐसे अज्ञानी जैसे तो होगे नहीं, मोह नहीं रहेगा और राग में भी अनंतानुबंधी वाला नहीं रहेगा। फिर भी राग है, परंतु अभी उसका स्वामीपना उसको नहीं है, तो उसका कर्ता भी नहीं कहने में आ जाएगा उसको। यहाँ क्या कहते हैं, अज्ञान में किस किस का कर्ता होके बैठा है? राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प का करने वाला अज्ञानी होता है, परंतु कर्म बंधन की क्रिया करने वाला अज्ञानी भी नहीं होता। ये शास्त्र में ऐसा आता है, अज्ञानी को राग का कर्ता कहो तो कहो, कहो तो कहो यानी किसी अपेक्षा से किसी नए से कह भी सकते हैं, परंतु परद्रव्य का या जड़ का कर्ता आत्मा तीन काल में नहीं हो सकता, न शरीर का, न कर्म का, न वाणी का, न अन्य किसी का। क्या नहीं? तो कहो तो कहो नहीं, किसी अपेक्षा से हम कह भी सकते अज्ञानी को कि ये राग का कर्ता है। ज्ञानी को तो राग का भी कर्ता नहीं कहेंगे और परद्रव्य का तो है ही नहीं है। तो परद्रव्य का कर्ता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, ये कह रहे। देखो फिर से, अज्ञान में राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प का करने वाला अज्ञानी होता है, परंतु कर्म बंधन की क्रिया करने वाला अज्ञानी भी होता नहीं। कर्म बंधन तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है, तो परवस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब मित्र किसको तुम करते हो? यानी वो कर्म जो अत्यंत नजदीक है, आपके क्षेत्र में है, वहाँ पर उसका भी करता नहीं हो, तो ये अत्यंत भिन्न जो पड़े हैं, स्त्री पुत्र पैसा भी सब उसकी लिस्ट बना दो, तो उनका कर्ता आप कैसे हो सकते, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी पर का कर्ता तो है नहीं, वास्तव में आत्मा वास्तव में अपने भाव को करता है, अपने भाव नाम अर्थात विकारी भाव, यहाँ विकारी भाव को लिया है, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। देखो यहाँ धर्म कहा उसको, हाँ अभी जहाँ जिस अपेक्षा से बात आती है वहाँ, जैसे हम 47 शक्ति की बात करेंगे तो वहाँ तो निर्मल परिणमन को ही आत्मा का आत्मा की पर्याय कहे, उसी का भाव कहा, शक्ति के प्रवचन में निर्मल पर्याय को लिया है। यानी जहाँ जिस विषय को जिस अपेक्षा से कथन किया है उसको वैसा समझना हमारी जिम्मेदारी है। क्या लिखा है यहाँ, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। देखो विकारी परिणाम जीव का स्वधर्म है, स्वधर्म नाम उसने धारण कर रखे है और उसे आत्मा ने ही किया है। धारण करना, धारयति इति धर्म, धर्म शब्द कैसे तैयार हुआ, संस्कृत शब्द है, तो जो जिसे धारण करता है वह उसको धर्म है, उसका धर्म है। तो आत्मा ने ही राग द्वेष धारण किए हुए उस रूप वही परिणमित हुआ है, इसलिए उसको उसका धर्म कहेंगे। ये धर्म है, वो स्वभाव भाव जो त्रिकाली धर्म उसकी बात नहीं है। मिथ्या मान्यता अर्थात यह मेरा, अरे यह चला गया मैं दुखी हुआ हूँ, उसे ठीक नहीं है तो मैं दुखी हुआ हूँ, वह ठीक है तो मैं सुखी, ऐसी मिथ्या मान्यता उसका स्वधर्म है। क्या कहा, मिथ्या मान, ये भी आत्मा की पर्याय है ना, मोह का जो परिणाम है मिथ्यात्व जो है आत्मा की परिणति है, आत्मा की पर्याय है, उसको उसका स्वधर्म कहने में आता है, क्योंकि उसने उसको धारण किया, उसने वो उस रूप परिणमित स्वयं हुआ है। स्वधर्म का अर्थ उसका वह कर्तव्य है, वह करता है, कर्तव्य ने करना चाहिए वाला कर्तव्य नहीं, उसका वो करना करने वाला है। वह जड़ से होता नहीं और जड़ का करता आत्मा नहीं। यानी जो विकार जो है मिथ्यात्व तो है, वो कर्म तो विकार नहीं करा रहा है, आत्मा ही स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। विकार स्वधर्म है ऐसा कहा, यह प्रवचन सार में लिखा है। कोई अज्ञानी कहते हैं कि दो पदार्थ के कारण विकार होता है, पति पत्नी दो होकर पुत्र होता है, फलाना ऐसा होता है, ढिकना ऐसे होता है, क्या कहते हैं वो, आत्मा और कर्म ने मिलकर राग किया, ऐसा उसको लगता है। आत्मा वास्तव में अपने भाव को करता है, क्या करे, अपनी पर्याय में अपनी दशा में विकार भाव को करता है, वो उसका काम है, दूसरा कोई काम नहीं। यानी अन्य कार्य जो पुद्गल के है वो उसके नहीं है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है, किसका, आत्मा का। शुभाशुभ भाव और वह मेरे है ऐसा मानना यह मिथ्यात्व है। मिला आपको, पेज नंबर 4 पर है, अभी नया दूसरा पैराग्राफ, शुभाशुभ भाव मिला और वह मेरे है। देखो यहाँ रागादि को ही स्वभाव कहने में आता है, हाँ स्वधर्म का स्वभाव का विकार को, हाँ क्योंकि आत्मा ने ही धारण किए है ना, कर्म ने तो उसको नहीं बनाया है, जड़ कर्म का वो कार्य नहीं है, वो आत्मा का कार्य है, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है। शुभाशुभ भाव और वह मेरे है ऐसा मानना यह मिथ्यात्व है, और वह स्वधर्म है, कौन सा, मिथ्यात्व भी, क्योंकि उस रूप भी आत्मा ही परिणमित हुआ है, धर्म अर्थात उसने आत्मा ने धारण किया है। विकारी पर्याय आत्मा ने धारण की है, उस विकारी पर्याय को कोई कर्म ने धारण की है, कर्म ने बनाई है, ऐसा नहीं। बराबर है भाई? ममता अपना स्वधर्म है, अज्ञानी करता है इसलिए स्वधर्म है ऐसा कहते हैं। धर्म यानी इस निश्चय धर्म की कहाँ बात चलती है? वो धर्म जो वितरागता है उस अर्थ में ये शब्द नहीं आया है। आत्मा ने धारण किया है ना, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, इस अर्थ में लेना उसको। तो कहते धर्म यानी निश्चय धर्म की कहाँ बात चलती है? उसे धारण किया है, उसने विकार धारण किया है ना, विकार किसने किया है? ऐसे हो जाता है वो कौन करता है? समझ में आया? आहा हा, देखो देखो ये डायरेक्ट प्रोज समय सार सुनते हैं, राग अपना है ही नहीं तो सर्वथा अपना है ही नहीं मान लेते हैं, परंतु वो अपनी पर्याय है और ज्ञान का गेय है, अपनी पर्याय में है और स्वयं हम उस रूप परिणमित हो रहे हैं, पहले स्वीकार होना चाहिए। स्वीकार करने के बाद फिर त्रिकाली का लक्ष्य करने के लिए वो है ही नहीं ऐसा कहेंगे, अपेक्षा सहित है ही नहीं, सर्वथा है ही नहीं मानेंगे तो वो तो मिथ्या तो आ जाए। गुरुदेव ने कितनी बार कहा है कि समय सार पढ़ने के पहले प्रवचन सार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान सही नहीं हो जावे तो पूरा जानना है ना, द्रव्य गुण पर्याय को पूर्ण तरीके से अच्छी तरह से जानना है और फिर जो स्वभाव यानी कायमी स्वभाव है उसका लक्ष्य करना है, उसमें मैंपना स्थापित करना है। पर अगर पर्याय के बारे में कोई आपकी मिथ्या मान्यता चल रही है, उस संबंधी मिथ्या ज्ञान चल रहा है और समय दर्शन हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे का पैराग्राफ देखो, मरते समय ऐसे हो जाता है, लड़के का क्या होगा? अरे छोड़ ना, देरा हित करना, यानी अभी मरने के समय में भी अरे मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा इसी का सोचता है, तो तू अपने बारे में सोचना ऐसा कह रहे। या देखो ना, एक मुमुक्षु को वेदना
शुरू हुई। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में रखे थे पार्कर के पास, उनको पैरलिटिक अटैक आया था, पूरा बोल नहीं सकते थे, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपको कुछ बताना है तो लिख के दे दो, बच्चे को कुछ देने का है तो। कुछ नहीं बोली, मत तो समय सार पढ़, यानी मैं पूरा दिन उनके पास बैठ के समय सार पढ़ता। मैंने उनसे पूछा था आपको कुछ बोलना है तो लिख के देना, लिख सकते थे, हाथ चलता था,
एक हाथ चल रहा था,
स्वाध्याय
एक बाजू पैरलाइज हो गई थी।
चलो
देखो क्या कहते, देखो मरते समय ऐसे हो जाता है, लड़के का क्या होगा? अरे छोड़ ना, तेरा हित करना। या देखो ना, एक मुमुक्षु को वेदना शुरू हुई, मरने की तैयारी हो गई, बुलाइए डॉक्टर को, तो इन्होंने कहा नहीं, कोई मुमुक्षु को बुलाओ। यहाँ एक वकील थे गुजर गए, उसका एक छोटा लड़का था, उसे ले आए तो उसके सामने भी नहीं देखा, किसके सामने देखना, यहाँ से जाना कहाँ है, मैं निश्चय से किसका हूँ, मेरा कुछ है नहीं और मेरे कोई है नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मेरा ज्ञान स्वरूप मेरे पास है, मेरे पास परवस्तु है, उसे मैं छुआ ही नहीं। कहते हैं कि वास्तव में अज्ञानी, यहाँ तो साधारण भाव की बात करते हैं, हाँ अपने भाव को करता है, स्वधर्म को करता है, इसलिए आत्मा को उसरूप होने की यानी परिणमित होने की शक्ति का संभव है। बराबर है? क्या कहते हैं, क्या कहा? विकार होने की अपने में लायकात है, यह कहते हैं। शक्ति का संभव यानी शक्ति का सद्भाव है, ऐसी शक्ति है विकार रूप होने की। क्यों हुआ? क्योंकि तेरी लायकात से हुआ, ऐसा कहते हैं। लायकात नहीं, उसको योग्यता कहेंगे, अपनी योग्यता से उस रूप परिणमित हुआ। करते हैं तो होता है, कोई करवाता नहीं, संयोग के कारण होता नहीं, यानी जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं वो कोई अन्य करने वाला नहीं है ना, संयोग उसको करता है, स्वयं करता है, यानी कि ना करते हैं तो होता है। मुमुक्षु कोई पक्का कर दे? गुरुदेव श्री कहते कौन पक्का करे? आत्मा को उस रूप होने की यानी परिणमित होने की शक्ति का संभव है। क्या कहा? राग द्वेष दयादान व्रत तप का विकल्प, यह मिथ्या राग वह अपनी पर्याय में करने की लायकात उसकी है। यह आत्मा का धर्म है। धर्म अर्थात अपने से हुआ, धर्म यानी यह शांति का धर्म कहते उसकी बात यहाँ नहीं है। समझ में आया आशा बेन? धर्म करो की बात आती है, वितरागता उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ विकार की बात चल रही है। ऐसी स्पष्ट बात है लो। इसीलिए आगे 47 नए के प्रकरण में कहते हैं, कर्ता मेरा धर्म है, राग का परिणमन मेरा धर्म है, ऐसा ज्ञानी भी जानते हैं। ज्ञानी की भी पर्याय में जितना राग है तो उनको पता है कि यह मेरा अपना परिणमन है, मेरे से हुआ है, मेरे परिणमने की अपेक्षा ज्ञानी ही उसका कर्ता कहेंगे हम उसको। उसका उसका स्वामीपना नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है, परंतु ज्ञान जानता है कि वो ज्ञान का ज्ञेय है। तो ज्ञानी भी जानते हैं मेरे पर्याय में इतना परिणमन का धर्म है और अकर्ता भी मेरा धर्म है, दोनों धर्म मेरे पास है। यानी कर्ता और अकर्ता, परद्रव्य का, हाँ, कर्तृ ने अकर्तृ ने कहते कि आत्मा, कुंदकुंदाचार्य की शैली लो सब निकाल दिया, कर्म फर्म नहीं करता, कर्म के कारण विकार होता है, कर्म के कारण विकार होता है, ऐसा अज्ञानी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसने कहा? कर्म उसके धर्म को पर्याय को करे, उसका धर्म पर्याय ने क्या है, कर्म रूप परिणाम ना, ये उसका कर्म है, उसका कार्य है। आत्मा को उस रूप होने की, किस रूप होने की, विकार रूप होने की, शुभ अशुभ परिणाम विकार मिथ्यात्व रूप होने की, अथवा यह मेरा और मैं उसका ऐसा मिथ्यात्व रूप होने की, उसका धर्म और उसकी शक्ति है। यानी वो विकार रूप होने की, मिथ्यात्व रूप होने की आत्मा की शक्ति है, शक्ति का संभव है। देखो संभव यानी शक्ति है लिखा ना। आत्मा को उस रूप होने की, परिणमित होने की शक्ति का संभव है, शक्ति का संभव है यानी शक्ति का सद्भाव है। अतः वह भाव अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। विकारी परिणाम जरूर जीव का कार्य है, वह कर्म का कार्य बिल्कुल नहीं है। देखो पंडित लोग में ये सब गड़बड़ चल रही है, चली है कि कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है। प्रश्न उठाया है, पहला प्रश्न ही वह है कि कर्म से चार गति में आत्मा रुलता है कि नहीं, कर्म से विकार होता है कि नहीं, ऐसा पहला प्रश्न वहाँ किया जयपुर में। यहाँ कहते हैं, मेरे ख्याल से जयपुर है नहीं, वो खानिया चर्चा की बात होगी शायद। यहाँ कहते मालूम है ना, खानिया तत्व चर्चा सुना है? जयपुर में एक खानिया है नहीं, वो तो चूलगिरी है ना, उसका नाम है खानिया गांव, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ विद्वानों की आपस में चर्चा हुई थी। ऐसी चर्चा की लिखित रूप से, ऐसा नहीं कोई कह के मैंने ऐसा कहा नहीं, पूरे लिखते थे प्रश्न ही, पूरे पेज टू पेज, ऐसे अनेक पेजेस तो प्रश्न चलते थे, फिर उनके नीचे साइन होती थी, फिर ये जवाब भी लिखित रूप से देते थे। ऐसे खानिया तत्व चर्चा के दो बड़े वॉल्यूम हैं, इतना से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ प्रश्न शुरू हुए कहाँ उत्तर शुरू।
वो जो अपने अपोजिट पार्टी है वो जो बोलेगी इतना लंबा लंबा बोल, उसको ही सही लगता है, इतने में वो उत्तर दे देता है, भाई इसको सही।
यहाँ कहते हैं कि
आप चूलगिरी गए, जयपुर ही नहीं गए? चूलगिरी
तो मंदिर से पर है मंदिर, और नीचे वहाँ नीचे का मंदिर देखा है ना, नीचे
कांच का मंदिर है,
बहुत बड़ा है, वहाँ हुई थी तत्व चर्चा। यहाँ कहते हैं कि तेरा विकारी भाव तेरे कारण से, तेरी शक्ति से, तेरे में हुआ है। तेरा विकारी भाव तेरे कारण से, तेरी शक्ति से, तेरे में हुआ है। कर्म तो निमित्त मात्र है, और निमित्त हम उसी को कहते हैं, क्या परिभाषा है याद है निमित्त की? किसको याद है? पूरी परिभाषा चाहिए। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता उसको निमित्त। हाँ बिल्कुल, वही एकदम याद होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है देखो ना, कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त ही उसको कहते, उस पर आरोप आता है परंतु वो उसका कर्ता नहीं है। कर्म ने तेरा विकार करवाया नहीं है, है कि नहीं? कि कर्म करवाता है नहीं, है कि नहीं? कि रस्व, वो हिंदी वाला की रस्व होता है, मराठी वाला की दीर्घ होता है। कि कर्म करवाता है नहीं, लोग ऐसा मानते हैं ना कि हम क्या करें, हमारा तो करने का भाव है। क्या कहते लोग? अरे हम क्या करें, हमारा तो करने का भाव है परंतु कर्म आए इसलिए विकार हो गया। करने का तेरा भाव ही है, सुन तो सही। दया दान व्रत शुभ शुभ परिणाम और मिथ्या तो भाव जीव का धर्म है, अपनी पर्याय में अपना आत्मा करते हैं तो होता है, पर से होता नहीं। भले वो शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, हमको क्या लगता है, अरे शुभ भाव तो हम सोच समझ कर करते हैं, अशुभ भाव आ जाते हैं, ऐसा ही क्या? हम यहाँ बैठे स्वाध्याय में बीच में कोई विचार आ जाता है तो अशुभ भाव आ गया, हमने नहीं किया, यानी उसका कर्तापना नहीं लगता है। अशुभ भाव का, अरे हम सोच समझ कर आए, इतनी तकलीफ थी फिर भी सब छोड़ कर हम यहाँ आ गए, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ वो मैंने किया। और कोई तो कहते नहीं वो सारे कर्म ही करवाते, कर्म के उदय से हमको सब होता है। अरे वो तो निमित्त है, वहाँ पर निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। यहाँ लिखा है ना, अपना आत्मा करते तो होता है पर से होता नहीं, बराबर है? कितनी बात कही देखो, अपने भाव को करता है एक बात कही, यह उसका स्वधर्म है दूसरी बात कही। क्या कहता है? आत्मा अपने भाव करता है एक बात बताए, और वो उसका स्वधर्म है ये दूसरी बात बताई, और उसके परिणमने की शक्ति का संभव है तीसरी बात कही, यानी उस रूप परिणमने की शक्ति का सद्भाव है यह तीसरी बात और बताई, और वह अवश्य में वह आत्मा का कार्य है इसी चौथी बात कही। कितनी बात स्पष्ट करते हैं, समझ में आया? क्या बातें बताई? अपने आत्मा चार बताई, एक आत्मा के अपने भाव को करता है एक बात, वो उसका स्वधर्म है दूसरी बात, और उसके परिणमने की शक्ति का संभव है तीसरी बात, और चौथी बात अवश्य में वह आत्मा का कार्य है। चार बात सिद्ध की, वो सिद्ध की मैंने की दीर्घ, और ऊपर है कि नहीं में वो की रस्व। चार बात सिद्ध की, आत्मा वास्तव में यानी निश्चय से अपनी पर्याय विकारी भाव को करता है एक बात, वह भाव उसका स्वधर्म है, उसने किया इसलिए उसका धर्म है, दो बात हुई। आत्मा को उस रूप होने की शक्ति संभव है तीसरी बात, और वह भाव जरूर आत्मा का कार्य है वह चौथा बोल लिया। वही रिपीट किया जो हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा था। मुमुक्षु ने कुछ पूछा बीच में, पूज्य गुरुदेव श्री कहते कार्य कहना है ना, कर्ता होना कार्य है, कर्ता का कार्य है, या तो आत्मा का कर्म है ना कार्य कहना है, तो कर्ता का वो कार्य, आत्मा करता है वो उसका कार्य है। यानी रागादि को आत्मा का कार्य यानी कर्म कहा तो आत्मा का कर्म कहने से आत्मा करता हुआ। अज्ञानी ये तकरार करते हैं कि नहीं, कर्म के कारण चार गति में रुलता है भगवान। चार गति में रुलने की योग्यता का भाव उसकी शक्ति में संभव है, यानी शक्ति में पाया जाता है, वह भाव उसका है उसका वह धर्म है और उसका वह कार्य है। आहा, आत्मा वास्तव में अपने भाव को करता है, वह नरक में जाता है तो कर्म के कारण नरक में जाता है ऐसा नहीं, अपने अपने उस भाव का करने वाला है, वह भाव उसका धर्म है, वह भाव अपनी शक्ति के संभव से हुआ है, वह भाव उसका कार्य है, बराबर है। उसकी तकरार करते हैं, पहला प्रश्न वह उठाया, पालीतानामा वह प्रश्न आया था, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव ऐसा कहते हैं कि कर्म के कारण रुलता है, आत्मा रखड़ता है, और आप कहते हो कि भाव कर्म विकार के कारण रखड़ता है, कर्म परचीज है, समझ में आया भैया, कर्म के कारण नहीं होता, विकार अपने कारण से होता है, करता है, कर्म तो निमित्त मात्र है। देखो प्रश्न, भाव तो खुद ही करता है ना, समाधान, तो कौन करता है, दूसरा करता है, ऐसे संयोग आते हैं तो ऐसे विकारी भाव आत्मा किए बिना रहे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे संयोग आए इसलिए आत्मा को विकार हुए बिना रहे नहीं, वो झूठी बात है। हम ही कहते हैं निमित्त की ओर देखते, क्या करे बेचारा, वो ऐसा ऐसा है ना, इसलिए उस यानी अपने राग द्वेष के लिए कुछ तो वहाँ प्रोटेक्शन चाहता है कि नहीं नहीं हम क्या करें, हम तो नहीं चाहते थे, मगर ऐसी परिस्थिति बनी तो हमको करना पड़ा। तेरा भाव तेरे से स्वतंत्र करता होकर विकार का कार्य तेरी शक्ति के संभव से, तेरे धर्म से, तेरे भाव से तूने किया है, ये तूने में तू दीर्घ करना। मुमुक्षु कहते घोलन करने जैसा है, वो जगदेशी घोलन करने जैसा है, इसमें ही बड़ी तकलीफ है, गोलन उस पर बारंबार विचार करने जैसा है, यानी निर्णय करने जैसा, एक्चुअली केवल घोलन यानी विचार करता बैठेगा, निर्णय तक पहुंचकर वो विकल्प को छोड़ना है, पहले में पहले कहेंगे तो इस पर बारंबार विचार करने जैसा है, इसको घोलन कहते हैं। गुरुदेव ने कहा ना इसमें ही बड़ी तकलीफ है, यानी पहले उसको स्वीकार ही नहीं होता है, अरे कर्म के बिना कैसे होगा, कर्म ही कराता है, यही सब जगह चलती बात, पहले इतना नक्की करे कि विकार कृत्रिम है, मेरा स्वभाव ज्ञायक चिदानंद है, ऐसी दृष्टि करने में स्थिर करने का उपाय मिले, परंतु यही नक्की न करे तो कोई कराए तब करे और कर्म टले तो होवे, क्या कहते हैं, जो कर्म से होते हैं मानेंगे तो कर्म टलेंगे तब रागादि रुक जाएंगे, तब हमारा मिथ्या तो रुक जाएगा और तब हम कुछ कर सकते हैं, ये उपराधीनता की मान्यता हुई ना, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, कर्म ने उसको मौका दिया तो ये आगे बढ़ेगा, उसका अर्थ यह है कि तेरी दृष्टि को स्वसन्मुख होने का अवसर रहता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा पर की तरफ दृष्टि लगा के बैठा है कि कोई आएगा और मेरा कार्य होगा। ओहो देखो अन्वयार्थ में लिखा है स्वभावम कुर्वन आत्मा, वास्तव में स्वकस्य भावस्य कर्ता भवति, लो उसका अर्थ है, प्रथम तो आत्मा वास्तव में अर्थात यथार्थ में, बाकी दूसरी रीत से कहना है कि कर्म से विकार हुआ और निमित्त से हुआ, वह सब उपचार से कथन है, यह वास्तव में है और वह उपचार से कथन है। क्या कहा, कर्म से विकार हुआ कहना ये निमित्त से कथन है ना, उसको उपचार कथन है, और वास्तविकता क्या है, जिसकी जो पर्याय है वो उसी की कहना, वो तो वास्तव है, तो आत्मा ने ही विकार को किया है, ये वास्तविक कथन है, ये यथार्थ कथन है, निश्चय से कथन है। उपचार से उसका ज्ञान कराने की बात है, किसका, कर्म के उदय की बात बताएंगे, कर्म के उदय में ये बात हुई, यानी कर्म से हुई कहने में आती है, कहने के लिए वो उसका ज्ञान कराया जाता है, व्याख्या इसी कही है, आत्मा वास्तव में स्वभाव को करता है, विकारी भाव अपने से करता है, और वह भाव उसका स्वधर्म है। उसने किया तो उसके पर्याय ने धारण किया है, इसलिए आत्मा को उस रूप होने की यानी परिणमित होने की शक्ति का संभव है। शक्ति का अर्थ यहाँ पर्याय लेना, गुण नहीं। समझ में आया? यह शक्ति शब्द पड़ा है ना, आत्मा की उस रूप होने की परिणमित चाहिए, परिणमती हो गया, परिणमित, मति के बदले मित करना, परिणमित होने की। क्या कहते हैं? शक्ति शब्द का अर्थ क्या लिया उन्होंने? आत्मा की उस रूप होने की, परिणमित होने की शक्ति का संभव है, उसका अर्थ गुण नहीं है, पर्याय में उस समय की शक्ति का संभव है। ये पर्यायगत योग्यता जिसको हम कहेंगे ना, उसको वह पर्याय की शक्ति से विकार होता है, गुण नहीं, द्रव्य में नहीं है, पर्याय की अपनी शक्ति है उस समय उस रूप परिणमने की। हाँ, उसका योग्यता है। देखो 8 नंबर के पेज पर आए हम, कुछ लिखना है आपको? हाँ, कुंद कुंदाचार्य देव की यह बात नहीं होती तो लोग कुछ का कुछ लगा देते, ये लिखित रूप से इतने परमागम है अवेलेबल। स्वयं कुंदकुंदाचार्य ने लिखी हुई गाथा भी है, अमृतचंद्राचार्य की टीका भी है, जयसेनाचार्य की टीका भी है, नहीं तो ऐसे ही कितने क्या क्या बता देते है ना। इतना लिख के भी इतने विरोध बात चलती रहती कि कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, उल्टा सुलटा करके कुछ का कुछ कर देता। यहाँ तो इतनी स्पष्ट बात कही है, ये उल्टा और सुलटा में सुरस्व चाहिए, उल्टा सुलटा। यह गेय का अधिकार है, तेरी पर्याय तेरा गेय है, पर की पर्याय पर गेय है। देखो पर्याय को यहाँ लिया है स्वगेय में, पर के गेय से तेरी पर्याय में पर गेय उत्पन्न होता है, विकार गेय है, तेरा गेय है। समझ में आया? कर्म पर गेय है तो पर गेय से स्वगेय की पर्याय होती है, स्वगेय की पर्याय स्व की पर्याय की शक्ति से, अपनी योग्यता से, योग्यता शब्द है ना, पर्याय की अपनी योग्यता से अवश्यमेव उसका कार्य है। तो अज्ञानी कहते हैं नहीं, पुत्र 2 से होता है। अरे वह तो अपेक्षा से प्रमाण ज्ञान करवाने की बात कही है। पुत्र 2 से समझ में, पति पत्नी 2 से फिर पुत्र होता है, ऐसे ही कर्म और जो कुछ बात है आत्मा, इनसे दोनों से मिलकर ये रागादि विकार होते हैं, ऐसा मानने वाले लोग हैं। विकार यहाँ तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्म की बात आती है, उपचार से कथन भी करने में आता है, यहाँ लिखा ना प्रमाण ज्ञान करवाने की बात है। विकार उदय भाव, अहो तेरी भूल, वह भूल करने का भाव वास्तव में तेरा है, भूल तेरा धर्म है, भूल वास्तव में यथार्थ में तेरा ही कार्य है, और वह भूल करने की पर्याय की उस समय की तेरी शक्ति और योग्यता है। लो, कौन सा नहीं समझा? फिर से देखो, विकार उदय भाव, ये उदय भाव किसका है, जीव का है कि कर्म का है? जीव का। उदय तो कर्म में है, कर्म का उदय कर्म की पर्याय है, पर उसके उदय में ये जीव स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है, उसको उदय भाव कहेंगे। औदयिक भाव जिसको कहेंगे, मोहराग द्वेष जो है वो औदयिक भाव है, उसी को विकार कहा। वह क्या है? तेरी भूल है, ये जीव की अपनी भूल है, वह भूल करने का भाव वास्तव में तेरा है। तेरी पर्याय का भाव, जो तेरी पर्याय है वो किसकी है? वास्तव में मेरी है, वो कर्म की नहीं है। रागादि जो पर्याय हुई है वो आत्मा की पर्याय है, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, कर्म उस रूप परिणमित नहीं हुआ है, ना कर्म में आत्मा में आकर कर्म ने कुछ किया है। तो कहते भूल तेरा धर्म है, तुझे जो भूल हुई है ये पर्याय को कहें ना, वो तेरी योग्यता से हुआ, वो पर्याय का धर्म है तो इसको तेरा धर्म है कहेंगे। भूल वास्तव में यथार्थ में तेरा ही कार्य है, और वह भूल करने की पर्याय की उस समय की तेरी शक्ति और योग्यता है, क्योंकि अभी इसी समय ऐसा ही रूप परिणमने की जीव की योग्यता है। क्योंकि हमने देखा ना, अनादि अनंत सभी पर्याय सुनिश्चित है, अपने अपने स्व समय पर निश्चित है, तो जीव ही उस रूप परिणमित हुआ है, वो उसका पर्यायगत स्वभाव कहेंगे उसको, उसी को उस समय की पर्याय की योग्यता भी कहेंगे। इतना तो स्पष्ट कहते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं, तुम कर्म को मानते नहीं हो, कर्म से विकार होता है ऐसा मानो, तो कर्म को माना कहाँ जाए। यानी वो तो सामने वाला क्या दलील करता है, कर्म से विकार होता है ऐसा मानो तो आपने कर्म को माना, नहीं तो आपने कर्म को स्वीकार ही नहीं किया। कर्म को माना कब कहा जाए कि कर्म है ऐसा माने तो, परंतु कर्म ने यह करवाया तो कर्म को कहाँ माना, वो तो उसका भाव उसने किया। भाई वहाँ कलकत्ता में बहुत चलता है कर्म से होता है, कर्म से होता है भगवान। अभी तो विकार की स्वतंत्रता का भी तुझे ख्याल नहीं, तो विकार रहित त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति का ख्याल तुझे कैसे आएगा, क्या कहते हैं। पहले पहले विकार तू अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है, ये तेरी पर्याय की भूल है, उसका भी तुझे, उसकी स्वतंत्रता का तुझे अभी ख्याल नहीं है, तुझे निर्णय नहीं है। तो कहते विकार रहित त्रिकाल ज्ञायक मूर्ति का ख्याल है नहीं, उसका निर्णय तुझे कैसे होगा, समझ में आती है ना। पहले पर्याय में जो है वो जीव की अपनी पर्याय में उसके स्वयं के कारण से हो रहा है, पहले स्वीकार होना चाहिए। विकार की पर्याय की स्वतंत्रता की पर्याय की शक्ति का कार्य तेरा है, क्या कहते हैं, यानी तू स्वतंत्र रूप से अपने विकार को कर रहा है, वो तेरा कार्य है। ऐसा भाव में ख्याल न आए तो विकार से रहित चिदानंद प्रभु पूर्ण शुद्ध स्वरूप में तेरी दृष्टि कहाँ से झुकेगी। वह तो अव्यक्त चैतन्य है। देखो पर्याय हमेशा व्यक्त होती है, और जो कोई भी हो, पुद्गल की हो या जीव की हो, जो द्रव्य शक्ति जो है वह अव्यक्त है, वो प्रकट होती है पर्याय रूप से। तो कहते यहाँ तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो कहते ये जो विकार से रहित चिदानंद प्रभु पूर्ण शुद्ध स्वरूप में तेरी दृष्टि कहाँ से झुकेगी। कब नहीं झुकेगी, कि विकार का भी वो स्वतंत्रता का ख्याल में नहीं है, तो निर्विकार ऐसे जो त्रिकाली कायम स्वभाव जो है उसकी दृष्टि नहीं होगी। वह तो अव्यक्त चैतन्य है, यह तो व्यक्त विकार है। क्या कहा, विकार वो व्यक्त है, हमारे ख्याल में आता है, परंतु उसके पीछे की शक्ति वो तो अव्यक्त है, वो तो ख्याल में नहीं आती। व्यक्त विकार का परिणमन भी मेरे से मेरा है, ऐसा स्वतंत्र भाषण न हो तो तेरी द्रव्य पर दृष्टि नहीं होगी, समझ में आया। अतः वह भाव, अब ये कल पढ़ेंगे, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए, हमने लेट चालू किया था ना। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। तारा भी
नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो